आस्तिक ने अपना पैर उठाया और उज्जवल के कंधे पर लात मारकर उसे खुद से दूर कर दिया। उज्जवल जमीन पर जा गिरा और आस्तिक ने गुस्से में उसे घूर कर देखते हुए कहा, तेरे बच्चों का सोचकर ही तुझे काम पर रखा था, लेकिन अब लगता है गलती कर दी है मैंने तुझे काम देकर। तुझे ईमानदारी की दो वक्त की रोटी बर्दाश्त नहीं हो रही थी जो तूने चोरी करना बेहतर समझा। जब तू चोरी करेगा और अपने बच्चों को चोरी की रोटी खिलाएगा तो उस चोरी की रोटी से तेरे बच्चों के खून में भी चोरी की ही भावना आएगी। वक्त रहते तुझे पकड़ लिया गया है, मतलब तेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। वो कुछ भी बनेंगे लेकिन चोर नहीं बनेंगे। आज मेरे एक कुत्ते ने मुझे काटने की कोशिश की है। अगर मैंने वक्त रहते उसका मुंह बंद नहीं किया तो तुझ जैसे और आएंगे। तुझ जैसे और ना आए इसके लिए तू सबके लिए एक सबक होगा। आस्तिक ने रॉयल गार्ड से कहा, उठा के ले जाओ इसे और डाल दो काल कोठरी में। इसका क्या करना है ये हम अमृता के सगाई के बाद देखेंगे। उज्जवल चिल्लाता रह गया, अपने लिए रहम की भीख मांगता रह गया, लेकिन आस्तिक ने उस पर रहम नहीं दिखाई। क्योंकि भले ही आस्तिक अपने परिवार के लिए बदल गया है, लेकिन न्याय के मामले में वो आज भी मॉन्स्टर ही है। वैसे शक तो आस्तिक को भी भूमि पर नहीं था, लेकिन इस समय अमृता की सगाई ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए उसने सोचा कि इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ना तो उसने भूमि पर शक किया था और ना ही उसने भूमि को गुनहगार समझा था। सब लोग बाहर गार्डन में फिर से आ जाते हैं। अमृता की सगाई का फंक्शन फिर से शुरू हो जाता है। भूमि अमृता के साथ ही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी। आहान के परिवार वाले और अमृता के परिवार वाले दोनों एक जगह पर मौजूद थे। आहान ने अंगूठी बढ़ाई और अमृता की उंगली में डाल दी, और अमृता ने भी आहान के हाथों को पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे और सगाई की रस्म पूरी हो गई। भूमि मुस्कुराते हुए तालियां तो बजा रही थी, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट फीकी हो गई थी। अमृता और आहान कुर्सी पर बैठे हुए थे और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। एक एक करके मेहमान उनके पास आते और उन्हें सगाई की मुबारकबाद देते। भूमि उन लोगों से थोड़ा दूर खड़ी हो गई थी। अब उसका मन पार्टी में नहीं लग रहा था, उसके चेहरे पर उदासी छा रही थी। भूमि ने भी जोधपुरी लहंगा ही पहना हुआ था, लेकिन जितनी खूबसूरत और प्यारी वो उस लहंगे में पहले लग रही थी, अब उसके मुरझाए हुए चेहरे के साथ वो लहंगा भी उतना ही फीका लग रहा था। भूमि के हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी और वो एक साइड की कुर्सी पर बैठी हुई थी, जहां पर मुश्किल से ही किसी की नजर जा रही थी। भूमि दूर से ही पार्टी में सबको देख रही थी। तभी उसे पीछे से आकाश की आवाज आती है, जो भूमि के पास आते हुए कहता है, तुम्हारे इस तरीके से छुपने से तुम लोगों की नजर से दूर नहीं रह सकती हो। भूमि पलटकर आकाश को देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि आकाश अरुणिमा और आस्तिक का बेटा है। अचानक से उसके कानों में अरुणिमा की बात सुनाई देती है कि वो भूमि को अपनी बहू के रूप में देखना चाहती है, लेकिन भूमि आकाश को देखकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो अपनी जगह से खड़ी होती है और एक कदम पीछे लेते हुए कहती है, आपने बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम क्यों लगा दिया था? आपको लगता है कि मैं चोरी जैसा कुछ कर सकती हूँ? आकाश घूरते हुए भूमि को देखकर कहता है, मैंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया था और ना ही मैंने तुम्हारा नाम लिया था, लेकिन इनडायरेक्टली आपका इशारा मेरी तरफ ही था जब आपने ये कहा था कि वहां पर सब फैमिली वाले हैं और एक मैं ही हूं जो बाहर से हूं। भूमि ने आकाश को देखकर कहा, तो आकाश ने भी सपाट लहजे में कहा, सिर्फ तुम ही नहीं थी वहां पर जो बाहर से थी, वहां पर खड़े सारे नौकरों को हमने गोद नहीं ले रखा है। मेरा इशारा उनकी तरफ था, पर वो तो मेरे भाई को अपनी वकालत झाड़नी थी, इसीलिए उसने घर के अंदर ही अदालत लगा ली थी। भूमि की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो आकाश को घूरते हुए देखकर कहती है, भाई? आकाश ने हाँ में सर हिलाया और कहा, अनंत मेरा छोटा भाई है। भूमि की आंखों में अचानक से चमक आ जाती है और वो कुछ सोचने लगती है। उसने जल्दी से पार्टी में देखा और फिर अनंत को ढूंढने लगी। अनंत उसे दूर कुछ लड़कियों के साथ हंसी मजाक करता हुआ नजर आ रहा था, और वो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि आहान की कजिन और उसकी बहनें थीं। भूमि अपना लहंगा संभालती है और अनंत की तरफ चली जाती है। आकाश कहता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं कि। लेकिन जब आकाश ने उस तरफ देखा तो भूमि वहां पर नहीं थी। आकाश देखता है तो भूमि अपने लहंगे को संभालती हुई अनंत की तरफ बढ़ गई थी। भूमि अनंत के पास जाती है और कहती है, थैंक यू अनंत जी, आपने मेरी इतनी मदद की अंदर मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए। चोरी का इल्जाम लगने के बाद मेरा मन भी नहीं था यहाँ रुकने का। पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाए हों। अनंत तुरंत भूमि को देखता है और कुर्सी से खड़े होते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो भूमि? तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। भूमि हैरानी से पूछती है, क्यों, क्या हो गया? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस मैंने सोचा था कि संगीत पर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड पर जब मैं डांस करूंगा तो तुम्हें अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। अगर तुम चली गई ना तो मुझे सच में दिल्ली जाना पड़ेगा अपनी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए। अनंत ने जब ये कहा तो भूमि का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हैरानी से कहती है, आपकी गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है? अनंत हंस देता है और कहता है,
अरे भूमि, मैं मजाक कर रहा था। छोटी छोटी बातों पर कितना सीरियस हो जाती हो तुम। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो दिल्ली में रहती हो, और वैसे भी पूरे सिंगल और राजस्थान में सबको पता है कि मैं किसका बेटा हूँ, इसीलिए कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में सोचती भी नहीं है। भूमि मुस्कुराते हुए अनंत की बात सुन रही थी, लेकिन अनंत ने धीरे से भूमि के कानों की तरफ आते हुए कहा, लेकिन मुझे शक है मेरे आकाश भाई की जरूर कोई गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं और वहां पर तो गर्लफ्रेंड रखना फैशन है। भूमि, अगर तुम कहो तो मैं पता कर सकता हूँ कि भाई की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। भूमि ने अपने कंधे उचकाए और बेफिक्री से कहा, मुझे क्या करना है आपके भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में जानकर, एक हो या चाहे दस।